أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، آمين يا رب العالمين. थोड़ी सी आपको उनको बात बता दूँ मस्जिद के हवाले से। मस्जिद आने के लिए जब आप मस्जिद आ रहे हो नमाज पढ़ने के लिए, तो और जब नमाज का इंतज़ार कर रहे हो, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियों में उंगलियाँ डाल के इस तरह बैठने से मना फरमाया, उसको कहते ना उंगलियों को कैंची बनाने से मना फरमाया। तो जब आ रहे हो मस्जिद और नमाज के लिए इंतज़ार में बैठे हो, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल जुमे से कुछ बैठे हुए जब आते हैं तो कई लोग ऐसे बना के बैठे होते हैं और इस तरह बैठ जाते हैं, तो वो तो जायज़ नहीं है। हाँ, नमाज के बाद कर सकते हैं ऐसे, लेकिन नमाज से पहले भी हो सकता है। ये रिलैक्सेशन मूड में जाने का एक वो होता है ना कि मन बहुत रिलैक्स हो जाता है, तो इसे बारी में ये हदीस है कि आप ने नमाज के बाद तो नहीं किया लेकिन नमाज से पहले भी किया, तो इस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए। इससे आप लोगों को करिए फोन पे कोई आवाज़ नहीं आती। दूसरे आप लोगों को पता है ना कि कौन से अवकात नमाज शुरू होने के अवकात कौन से हैं और कौन से वक्त तक आप नमाजें पढ़ सकते हैं, बात ये मालूम है आपको? शाम से मेरा सर झुक गया तो मैंने आपको पहले क्यों नहीं बताया था?
हमें नहीं पता अगल वक्त नमाज पढ़ने बाद ये तो नहीं देखते कि कब तक पढ़नी चाहिए।
हाँ, लेकिन हो सकता है कभी लेट हो जाए तो क्या करेंगे?
तो फिर ये है कि उसके दिन जब नमाज का टाइम शुरू हुआ तो एक घंटे तक जो है ना उससे हमें होता है पढ़ लेना चाहिए। जोहर का ज़रा ज़्यादा होता
अच्छा,
लेकिन असर का इतना ज़्यादा नहीं है। मगरिब का तो फौरन ही कहते हैं पढ़ो ना, लेकिन फिर भी
असर में भी देखिए गर्मियों में बहुत लंबा टाइम होता है, सर्दियों में बहुत जल्दी खत्म हो जाता
है। तो कोई हिसाब होता है फिर की नमाज का, तो खाया मेरा खाला डबल हो जाए या किसी तरह को
जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आके या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया था अव्वल वक्त की नमाज, और फिर उसके बाद जो जब नमाज का टाइम बिल्कुल यानी आखिर वक्त है वो कौन सा है। यानी ये ऐसे औकात जो नमाज का ना वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अल्लाह ताला ने उसके लिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा कि वो जाके सिखाएं ये बात। ये कितनी बड़ी बात है, यानी बाकी चीज़ें वैसे भी वही नाजिल कर दी जा सकती थी लेकिन उसके लिए प्रैक्टिकली करके दिखाया गया है। फोन पे आवाज़ वो कह रही है ठीक है, तो फोन पे आप चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ नमाज का, फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह कॉल करेंगे। नमाज का फजर का वक्त कब से स्टार्ट होता है? टाइम नहीं कौन से वक्त अजान आप कब देंगे? ऐसे जगह पे आप फोन यहाँ पे अजान नहीं होगी, तो अब यहाँ पर तो होती नहीं होगा। कंप्यूटर ना हो या कुछ हो तो आपको पता तो ये होना चाहिए ना कि कैसे क्या चीज हम देखते हैं।
अभी हमारे पास यहाँ पे बहुत लाइटें होती हैं, लेकिन अगर पाइप ना हो,
ये लाइटें ना हो जो हमारे पास आजकल ये बिल्डिंग वगैरह की ये इनकी लाइट्स बहुत ज्यादा होती है ना, अगर बिल्कुल अंधेरा हो तो फिर आपको ये चीज नजर आएगी। और फ्लैट जगह हो, बिल्डिंग बहुत रहती है तो फ्लैट अगर जगह हो तो यहाँ से आपको इस लाइन मशरक से नजर आएगी कि ऊपर को जा रहे हैं। मशरक ईस्ट से आपको नजर आएगी एक लाइन ऊपर को जा रही है, जैसे अंधेरा है बिल्कुल ना, उसमें एक लाइट की लाइन ऊपर जाती है, इसको कहती है सुबह ख़ैर। उसके बाद ये रोशनी फैलना शुरू होती है, जब ये फैलना शुरू होती है तो सुबह साबित होता है, इस टाइम पे फजर होती है स्टार्ट। इस वक्त यानी ये जब रोशनी ऐसे ये सूरज के भी सूरज नहीं निकलना शुरू हुआ, ये रोशनी फैलना शुरू हो गई ईस्ट से, ये इस वक्त ये टाइम है फजर के स्टार्ट होने का। अच्छा, अब फजर का टाइम हो गया, आज आप सो रहे हैं, जिस वक्त आपकी आंख खुली उस वक्त सूरज बिल्कुल was not good. अगर मैं माइक में ना बोलूं तो तब सही आ रही है आप लोगों को? टू मच एको जी, अब सही है? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब आप सुबह उठे अगर, और अच्छा अगर आप सुबह उठे हैं और आपको लग रहा है एक मिनट रह गया, दो मिनट रह गए, फॉर एग्जाम्पल सूरज निकल रहे हैं, सूरज जो तलू होना होता है ना, वो एक अलग बात है कि सूरज तलू होना शुरू हो गया, मतलब ऐसे सूरज ये सूरज यहाँ से निकलना शुरू, तो ये एक दो मिनट रह गए, आप क्या करेंगे? अच्छा, तो अभी अभी यानी एक दो मिनट रह गए, अब आपने
फर्ज,
अब आपने सुना तो नहीं पढ़ा, आप जो ये फर्ज स्टार्ट करेंगी तो एक मिनट के अंदर अंदर तो फर्ज नहीं पूरे हो सकते, एक रकत हो सकता है आपकी हो जाए, ठीक है? तो अब आप क्या करेंगे? तो एक रकत हो गई, दूसरी रकत के अंदर सूरज निकलना शुरू हो जाएगा, तो अब आप क्या करेंगे? ठीक है, अगर एक रकत भी मिल गई तो आपने स्टार्ट कर देनी है, अगर कुछ निकलना शुरू हो गया फिर नहीं, लेकिन अगर आपको लग रहा है जस्ट वन मिनट लेफ्ट, आप उस एक मिनट के अंदर जल्दी से आपने वजू बनाया और आप जब खड़े हुए नमाज के लिए तो आपको पता है कि एक रकत में पढ़ लूंगी और सूरज निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो आपने दूसरी रकत बेशक उस दौरान हो जिस वक्त सूरज निकल रहा है, इट्स ओके, वो आपकी नमाज हो गई, ऑफकोर्स उसका अजर उतना नहीं है जितना कि आप अफजल वक्त में पढ़े, लेकिन नमाज आपकी कजा नहीं शुमार होगी अनलेस कि ये जो है ना निकलना शुरू हो जाए।
तो ये कितना टाइम
था नमाज के बाद, आप उसके इशराक के टाइम से देखिए ना, तो उसे पीछे कर लें 15 मिनट तक, सनराइज का टाइम भी यहाँ पे बता
दें।
इसी तरह आप ये देखें असर का वक्त है, असर की आपकी नमाज आज मॉल के अंदर रह गई, और जब आप घर आए तो उस वक्त क्या था कि सूरज गुरूब होने अभी हुआ नहीं है लेकिन होने वाला है, होने में बस एक मिनट रह गया, तो तब भी आप क्या करेंगे, एक रकत भी अगर आपकी उस दौरान हो गई जिस वक्त के सूरज अभी गुरूब नहीं हुआ, तो तीन रकतें चाहे उस वक्त भी हो रही है जब वो सेट होना शुरू हो गया, इट्स ओके, एक रकत भी होने का अगर टाइम है ना तो आप स्टार्ट कर देंगे, ठीक है जी? असर इसी तरह फजर भी, मैंने जो बताया ये बात समझ आई है आप लोगों को, ठीक है? नहीं, आप देखिए उसको कि वो कौन सा टाइम है, आपने किसी को पता है सनराइज का वो कौन सा टाइम दिखा होता है जब वो सनराइज करना शुरू होता है या क्या? हाँ, तो फिर इसका मतलब है सनराइज के टाइम जो है ना उससे एक मिनट पहले भी अगर आपको मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल 7:10 है आज अगर सनराइज टाइम, तो 7:09 पे आपने अगर स्टार्ट कर दी है, आपकी एक रकत हो जानी चाहिए एटलीस्ट वन रकत, ठीक है? अच्छा, और अगर आप सोए रह गए, कभी ऐसा होता है ना गलती से, ऐसे नहीं जान बूझ के वाले बात नहीं कह रही कोई रोज का मामला होना, अगर आप सोए रह गए, अलार्म बजा आपको पता ही नहीं चला, कभी ऐसे भी हो सकता है, अच्छा आपको पता ही नहीं चला अलार्म बज के, और जब आप आए, जब आप उठे तो उस वक्त सूरज निकल चुका हो, तो अब क्या करेंगे? पढ़ लेंगे नमाज, क्या पढ़ेंगे? कजा नहीं, आप भी अगर गलती से ऐसे रह गई तो आपकी नमाज उसी वक्त उठते ही आप पढ़ लें तो अदा है, कजा नहीं है, क्योंकि वो जो इंसान सो गया उससे कलम उठा लिया जा, दीवाने से बच्चे से, और जो सो गया इंसान उससे कलम उठा लिया जा, वो जान बूझ के नहीं सोया, वो सोया रह गया, वो रोज पढ़ता है लेकिन आज फॉर सम रीजन तो वो उठते ही अगर पढ़ लेगा तो वो कजा नहीं अदा से मारोगे,
तो रोजा भी आते हो सकते,
अगर आपकी नियत रात से थी रोजा रखने की, फर्ज रोजा है ना ये, फर्ज रोजे की कजा भी या फर्ज रोजा भी आपको नियत पहले से करनी पड़ती है, उसी वक्त उठ के नहीं आप कर सकते। हाँ बिल्कुल, आप उसी वक्त आपने अपना नियत तो आपकी पहले से थी, अब आप बस अपना रोजा स्टार्ट आपका हो गया, सहरी ऑफ कोर्स नहीं करेंगे ना, सहरी का तो टाइम गुजर चुका है। बस इतनी देर के लिए अजान पूरी होने तक आप खा लें। अच्छा, और असर का टाइम कब स्टार्ट होता है, चलो जुहर का टाइम कब स्टार्ट होता है, चलो जुहर के आते हैं, जुहर का टाइम कब स्टार्ट होता है, इशराक से एक मिनट पहले नहीं, वो जवाल का टाइम है, इशराक से एक मिनट पहले नहीं मैंने कहा, इशराक उस वक्त होती है जिस वक्त सूरज निकल चुका होता है, नून के बाद, व्हाट इज नून टाइम, वो हाउ वुड यू डिफाइन नून, कि नून क्या है, नून को आप कह रही है ना जो बिल्कुल जवाल के बाद, आप कह रही है जवाल के बाद, यानी जवाल के बाद जवाल कौन सा टाइम आपका है, जवाल के 15 मिनट के बाद, 5-7 मिनट भी होता है, जवाल किस वक्त होती है, जवाल हाँ जब साया नहीं है, जब कोई चीज का साया नहीं होता, लेकिन आपको पता है कि इन कंट्रीज में जिनमें हम रहते हैं यहाँ पे जवाल के वक्त भी थोड़ा सा साया होता है, क्योंकि जो इक्वेटर के साथ है ना, ग्लोब है ना ये, इक्वेटर के साथ जो कंट्रीज है यहाँ पे नहीं छाया होता मून के, लेकिन जो इससे ऊपर या नीचे कंट्रीज है उनमें छोटा सा साया होगा, उसको असली साया कहते हैं, तो एनी हाउ आपको ना थोड़ा सा साया होगा, लेकिन यानी वो उसका एक ऐसा साया, क्योंकि वो सूरज से आप इक्वेटर से ऊपर या नीचे हैं तो वो साया हमेशा रहता है, लेकिन वही जवाल का वक्त होता है, उस वो जवाल का वक्त है, अब उस टाइम से उस टाइम के बाद वो ही जवाल का वक्त ओवर होता है, और फॉर एग्जाम्पल ये है दीवार, उसका साया ये था जो तो जवाल के वक्त में था जब सूरज बिल्कुल टॉप पे था, उसके बाद वही साया सूरज मगरिब की तरफ जाना शुरू होता है और इधर को साया बढ़ना शुरू हो जाता है, जो ही बढ़ना शुरू हुआ उसी वक्त, जो ही जवाल का वक्त खत्म हुआ उसी वक्त जुहर का वक्त स्टार्ट हो जाएगा, और जुहर का वक्त कब तक रहेगा, जब तक क्या है, हाँ जब जोहर खत्म होती है ना तो तब असर स्टार्ट हो जाते, उसके साइज के बराबर साया आते हैं, अगर 1 फुट चीज है तो 1 फुट का साया आता है, लेकिन अगेन ये वहां पे जहाँ पे इक्वेटर है ना वहां पे होगा, यहाँ पे ऑलरेडी भी ये वाला साया हर वक्त ही रहता है चाहे सूरज ऊपर, तो ये साया प्लस आगे इससे जितना ये 1 फुट बन जाए, 1 फुट की चीज का उतना जोहर का वक्त खत्म हो जाता है और असर का स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, असर का वक्त कब खत्म होगा,
कभी कभी हम बच्चों को अगर वो देर हो रही है उनको तो कहते हैं आप तुम असर का टाइम खत्म है,
असर का टाइम तब तक है जबकि सूरज डूबना स्टार्ट ही कर देता है, अगर सूरज यमा पे है उसने डूबना स्टार्ट नहीं किया तो मैंने आपको बताया ना एक रकत का भी अगर टाइम है तो आप एक रकत पढ़ लेंगे, उस एक रकत के आपने एक रकत पढ़ ली और 3 रकत अभी आपकी रहती थी कि सूरज ओवरडूब होने शुरू हो गया तो आपकी इंशाल्लाह असर हो जाएगी, नहीं नहीं मगरिब उस वक्त है जब सूरज डूबने में भी तो थोड़ा टाइम लगता है, 5-7 मिनट लगेंगे सूरज डूबने में, उस वक्त नहीं पढ़ना, अगर वो गुरूब हो रहा है उस वक्त नहीं पढ़ना, लेकिन अभी गुरूब नहीं हुआ, गुरूब होने में 1 मिनट बस वक्त है, तो आपने स्टार्ट कर ली बस, आपकी शुरू हो गई, आपकी लिख ली गई है असर इसने पढ़ना, जिस वक्त वो गुरूब हो रहा है उस वक्त नहीं, उसके बाद फिर तो रुकी जाए तो कजा हो गई, फिर जब गुरूब हो गया अब क्या करेंगे अगर असर रह गई है, पहले असर पढ़ेंगे या जुहर भी अल्लाह ना करे अगर रह गई हो तो जुहर पढ़ेंगे फिर असर पढ़ेंगे फिर मगरिब पढ़ेंगे, ठीक है, जुहर असर फिर मगरिब, अच्छा मगरिब का टाइम कब तक रहेगा,
45 मिनट,
लेकिन वैसे हम डिफाइन कैसे करेंगे सूरज के लिहाज से बताएं आपने, आप जब मगरिब की तरफ देखेंगे ना ईस्ट साउथ नॉर्थ की तरफ नहीं, वेस्ट की तरफ आप देखें, जब वेस्ट की तरफ देखें वहां पे ना कोई डाली रह गई है ना कोई सफेदी रह गई, वहां पे अंधेरा हो गया, तो आप ईशा का टाइम स्टार्ट होगा। कभी कभी हमने मसलन कहीं जाना होता है या कुछ है, क्लियर अगर आसमान है तो अब हम कहते हैं ईशा की अजान तो नहीं हुई लेकिन ईशा का वक्त स्टार्ट हो गया क्योंकि बिल्कुल अंधेरा होगा, तो अब हम पहले ही नमाज पढ़ लें। अच्छा, ईशा की नमाज, सारी नमाजें तो पढ़नी अफजल है पहले वक्त में, ईशा की नमाज किस वक्त पढ़नी अफजल है, ज्यादा अच्छा है?
सोने से पहले।
मैं अगर 2-3 बजे सोती हूँ गप्पे लगा लगा के सारी रात, तो फिर मैं 2-3 बजे उठूँ उस वक्त जब मैंने गपशप सारी कंप्लीट कर ली हो, उसके बाद मैं अब नींद के अंदर हूँ और मैं 2 सज्दे करूँ
अकेले उस वक्त नहीं, लेकिन अगर जब से नॉर्मल
या मैं शादी से आती हूँ उसके बाद 1-2 बज जाते हैं तो क्या उस वक्त पढ़ना, उस वक्त पढ़ना सही है? यानी सोने से पहले ना करें फिर, क्योंकि हर एक के सोने का टाइम तो अलग है ना। मुस्तहब जो टाइम है ना
1/3 नाइट की जरूरत है,
1/3 नाइट, ठीक है? अब 1/3 नाइट आप कैसे डिफाइन करेंगे? हाँ, मगरिब से शुरू हो गए,
फॉर एग्जाम्पल 6 बजे की असार है, इसलिए तो इसलिए मैं यही कर रही हूँ 1/3 नाइट कैलकुलेट करना। 6 PM पे आपकी मगरिब हुई और 6 AM पे आपकी फजर हो गई,
आप इसको अंदर लगाएंगे क्या टाइम होगा 1/3 नाइट? हाँ, 10 बजे होगा, 10 12 के अंदर से 9 बजे होगा,
9 से 10 नहीं 9 बजे।
1/3 नाइट वुड बी 9 PM तक आप उसको फिर वो करें, और आधी रात तक आप इसको पढ़ सकते हैं।
आधी रात क्या होगी 12 बजे तक, ठीक है? अब हम हमेशा हर एक का रूल 12 बजे ना रख ले, क्योंकि कभी सानू 5 बजे ग्रुप हो रहा है, कभी 7 बजे हो रहा है, कभी अब 8 बजे होना शुरू हो जाएगा। हाँ, आपकी बात सही है, वो 12 नहीं है, वो असल में क्या है आधी रात। अब आधी रात को आप कैलकुलेट पता है कैसे करेंगे? मगरिब से लेके फजर तक के टाइम के दरमियान देखेंगे, ठीक है? 12 का हम ना, आप देखें पहले जो 11 का वो अब 12 होंगे, तो घड़ियां आगे पीछे करते रहोगे तो 12 तो कहां से कहां चेंज हो जाता है। इसी तरह जुहर का अगर हम ये सोच ले 12 बजे जवाल का टाइम, 12 बजे कैसे भाई, कल तक तो 12 11 1 बजे 12 बज रहे थे, अब पीछे हो गया टाइम या आगे हो जाता है टाइम, तो रोज तो घड़ियां चेंज होती है, तो उससे नहीं आप कैलकुलेट करते। अच्छा, फिर आप जो बाज़ उलमा कहते हैं कि मकरूह है वो, बाज़ कहते हैं कि कज़ा ही होगी आधी रात के बाद, ठीक है? तो इससे आप अंदाजा करें कि फिर यानी जो हमारा बहुत लेट हो जाता है या बहुत कहीं आप फंक्शन वगैरह से आते हैं बहुत ही लेट हो जाता है, तो फिर कितनी दफा हमारी नमाज कज़ा या मकरूह वक्त के अंदर को एटलीस्ट एंड
करें। जैसे हम बाज़ का साथ साथ कहीं जाना है
अच्छी बात, अगर हमें पढ़ ली के वापस, अगर आप इतनी लेट आ रहे हैं, अगर वापस आप इतनी लेट आ रहे हैं कि आपका टाइम आधी रात होना या आप सोचते उसको इतने थक गए होंगे कि सही तरह, लेकिन मैं आपको मुस्तहब बता रही हूँ, ज्यादा पसंदीदा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे उसमें होता तो मैं तुम्हें इस वक्त नमाज पढ़ाता यानी 1/3 नाइट गुजारती, लेकिन उम्मत की यानी आसानी के लिए अव्वल वक्त में भी आपने पढ़ाई है उस वक्त भी आप पढ़ सकते हैं, कोई ऐसी नहीं। लेकिन मैं आपको इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आप जोहर आप अफजल वक्त में भी पढ़ सकती हैं और आप जरा लेट करके भी पढ़ सकते हैं, इसी तरह ईशा का अफजल वक्त फौरन नहीं है, वो 1/3 नाइट गुजरने के बाद, ये बताने का वक्त मकसद। जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत एक दफा जुहर की रह गई थी, कोई लोग आ गए थे तो जुहर की 2 सुन्नत रह गई थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर के बाद पढ़ी थी 2 सुन्नत, ठीक है? फिर अपने फर्ज की आपको फौरन हिफाजत करनी है, तो फर्ज आपका पूरा हो जाए, सुन्नत आप बेशक बाद में भी पढ़ लें। और अगर सनराइज होने वाला है, आपको मैंने बताया 1 रकत आपको मिल सकती है, वो सुन्नत नहीं पढ़ने खड़े हो जाएंगे, सुन्नत बेशक बाद में पढ़ लें जब सनराइज हो चुका हो, ठीक है? हाँ, बेहतर तो यही है कि आप सुनें। नहीं तो अच्छी बात है, आप बस नफल पढ़ के सुने, देखिए वो तो एक अफजल वक्त है ना, उस वक्त दुआएं कबूल होती हैं, इसमें उलमा का इख्तलाफ है। वैसे कुछ कहते हैं कि सोना जरूरी है, कुछ कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं सोए बगैर, ये उलमा का इख्तलाफ है, तो मैं आप जैसे भी कर लूंगी। आप कुछ सवाल करें जी? जी नहीं, सारी कज़ा में नहीं, सिर्फ फजर की कजा में सुन्नत पढ़े, फजर की कजा में टू सुन्ना पढ़नी है आपने, चाहे कजा भी हो। लेकिन जो आपकी आंख लग गई और उसके बाद आपकी आंख खुली है तो उसको आप कजा नहीं समझे, इंशाल्लाह वो अदा हो गई। जी 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 एक्सेप्ट जी। होना तो ऐसे ही चाहिए, आप इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। हाँ रखें अपने घर के अंदर कोई चीज रखें और उसका साया इस तरह कैलकुलेट करें। नहीं सारे करें, सब करें, कोई किताब रख लिया जिसके भी पूरा सन हो, जिस जगह पे सारा दिन आता हो सन ही, वहां पे ऐसे करके देखें और टाइम कैलकुलेट करें कि असली साया कहाँ तक आया जो उसका ओरिजिनल है, जिस वक्त बिल्कुल सूरज टॉप पे है उस वक्त, उसके बाद साया घटेगा नहीं, उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है वो है जवाल का वक्त, यहाँ पे हम इक्वेटर से दूर है ना, इसलिए वो छोटा सा वो रहेगा ही हमेशा, वो कभी भी एलिमिनेट नहीं होगा। जैसे अगर मक्का वगैरह अरब में चले जाए तो बिल्कुल साया होगा ही नहीं नून टाइम पे, बिल्कुल ऊपर हुआ, क्योंकि वो इक्वेटर पे है ना वो लोग और हम जरा ऊपर है। अब आप नफल पढ़े ताकि अल्लाह ताला उनको उन फर्जों में काउंट कर लें और अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करेगा। ठीक है, अगर एक रका का असर टाइम हो और दो प्रायर सलात लेफ्ट, मेक अप दो लॉस बस नो, मेक अप द वन जिसका टाइम है, आप उस वक्त असर को पकड़ेंगे ना, उसको नहीं जाने देंगे ना कि वो भी कजा हो जाए पिछली कजाएं पढ़ते पढ़ते। ठीक है, वो बाद में पढ़ सकते हैं। हाँ अगर एक रकत का भी टाइम है तो तब पढ़ लेंगे, अगर वो शुरू हो गया गुरु होना तो फिर तो वो गई ही, चली ही गई है ना, वैसे फिर आप उसके बाद वो हो जाए तो फिर आप पढ़ लेंगे, वो इतना ज्यादा टाइम नहीं होता, 4-5 मिनट ही होता है। हाँ नहीं जी हाँ, आपका वो वेट करते हैं जब आप असर की नमाज अदा कर लेते हैं तो उनको ज्यादा ना वेट कराएंगे पहले तो नहीं उनकी भी ड्यूटी खत्म हो। अल्लाह कज़ा तो हमारे लिए एक अल्लाह ताला की तरफ से एक सहूलत हो गई ना अल्हम्दुलिल्लाह, कि अगर ना कज़ा ना होती तो फिर क्या होता, ये तो गई गई नमाज। ऑफ कोर्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगे नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगे अजाब में नमाज कज़ा हो गई थी असर की, तो अब उसके बाद फिर अदा की ना, तो फिर कजा का मतलब इसीलिए ये सहूलत रखी गई दीन में कि कभी हो सकता है किसी की कजा, इंसान है ना हम सब और हर एक का इतना लेवल नहीं है, कभी कजा हो सकती है और बहुत दफा जिंदगी में ऐसे होता है कभी तो भूल ही जाते हैं ऐसी भूल। अच्छा अगर भूल भी गए तो भूल जाने वाला भी इंसान जो ही याद आए उसी वक्त पढ़ लें, कभी ऐसे होता है कि पता नहीं वो कहां जहन कि इंसान कहता है ऐसे लगता है कि मैंने पढ़ ली थी लेकिन उसके बाद याद आता है नहीं पढ़ी, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हो तो बहुत ही अच्छा है। 10 बजे के बाद पढ़ना मकरूह है ये या 12? नहीं 10 बजे के बाद नहीं, आधी रात के बाद, आधी रात को कैलकुलेट कर लें आप, मगरिब से लेकर और फजर तक का अपना टाइम देखें, उसका निकालें कि उसमें आधी कब, उसका आधा कब बनता है, यानी कजा भी हो जाए तो इशा के टाइम के दौरान अगर आंख लग गई तो। हाँ एक बात याद रखें, इशा मगरिब के बाद सोना जो है ना पसंदीदा नहीं है, मगरिब के बाद सोना पसंदीदा नहीं है। ठीक है, तो मगरिब के बाद जो है ना सोना नहीं चाहिए इसी वजह से कि कहीं इशा ना कजा हो जाए। नहीं असर के बाद नहीं कहा गया, मगरिब के बाद खासतौर पर कहा। हाँ असर के बाद सो सकते, मगरिब के बाद नहीं सोना चाहिए। फजर इज कजा बाय चांस, वी हैव टू डू सुन्नत नमाज ऑफ फजर ऑल्सो विद फर्ज कजा। जी बिल्कुल, इफ 15 मिनट्स बिफोर फजर शुड बी से फर्ज फर्स्ट एंड देन सुन्ना, अगर टाइम जा रहा है 15 मिनट्स मैं नहीं इसलिए कह सकती, इसलिए कि मुझे नहीं पता कि आपके यहाँ पे कितना टाइम उसमें होता है, लेकिन अगर यानी बिल्कुल सूरज निकलने वाला है और आपकी नमाज आपको लग रहा है बिल्कुल जाने लगी है तो फौरन फर्ज शुरू कर दें, फिर सुन्नत बाद में पढ़ें। अगर जोहर कजा हो गई तो क्या मैं असर के बाद पढ़ या असर के पहले, असर से पहले पढ़ें, असर से पहले पहले जोहर की कजा करें उसके बाद असर। इफ यू आर डूइंग सुन्ना एंड जमात स्टार्ट डू यू ज्वाइन जमात, जी अगर जमात है तो फिर जमात से जमात को ज्वाइन करें, ठीक है। अगर बहुत सारे लोगों की कजा हो गई है अल्लाह ना करे किसी वजह से, तो वो सारे के सारे जमात से मिलके कजा पड़ेंगे भाई, ठीक है। जमात कजा की भी जमात होती है। चलेंगे इंशाल्लाह शुरू करते हैं। अच्छा आप लोगों का होमवर्क था लास्ट टाइम का, वो कर लिया आपने? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अब आप अपने साथ वालों को जो आपके राइट पे बैठे हैं उसको अपना होमवर्क दे दे, अपना नाम लिख के। क्या नहीं देना? नहीं नहीं दे दे, कोई बात नहीं। वो आप उनको देंगे, उनको देंगे, सबके लिए मेरे पास इंतजाम है। अच्छा आप ऐसा करिएगा बाद में आप इसको क्लास के बाद ना इसमें लिख लें कॉपी में और उसको किसी को भी जो भी एंड में होगा उसको दे दे, हर एक दूसरे का चेक करेगा, ठीक है। और फिर आप नेक्स्ट टाइम देंगे, इससे क्या होगा कि आप लोगों की एक और दफा दोहराई होगी, एक और दफा खोलेंगे एक और नहीं आगे दे नहीं आप उसको कॉपी करेंगे। ठीक है ना, आप लोग जो जहां पे भी हैं वो आप लोग स्कैन करके एक दूसरे को भेज दें या करीब कोई रहता है तो उसको दे दें, ठीक है। अच्छा कौन बताएगा मुझे इसकी तरफ देखे बगैर कि इसम वाले हाज एराब क्या होता है, इसकी क्या किस्म है, जी बताइए। शाबाश, वेरी गुड। तो एराब का, एराब किस चीज को जाहिर करता है, एराब की इतनी जरूरत हमें क्या है कि हम ये देखेंगे किसका चेंज होता है। शाबाश, एराब जो है ना वो जुमले में बताएगा कि ये क्या है, जुमले में बताएगा कि ये क्या है, ये इसम क्या है, इसकी क्या हालत है, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने कुछ लिखती हूँ, आप देखिए, कभी आप कहते हैं आप दू, कभी आप दा, कभी आप दी, आप तीनों को हम देखेंगे किस तरह से वो जुमले के अंदर जब आता है तो फिर उसकी वजह से उसका मीनिंग कैसे चेंज होता है। कभी हम कहें जा अब्दुल्ला, कभी हम कहें रअईतु, और कभी हम कहें ذهبت الى عبد الله। अब यहाँ पे मैंने चेंज किए सिर्फ एराब इसकी, लेकिन एराब के चेंज करने की वजह से तीनों जगह पे मीनिंग चेंज हो गया। पहला जुमला जा अब्दुल्लाह, इसमें अब्दुल्लाह क्या बन रहा है, फाइल, शाबाश। कौन सी हालत है इसकी, रफाई हालत, वेरी गुड। यानी जा अब्दुल्लाह मीन्स अब्दुल्लाह आया, ठीक है। अच्छा फिर रअईतु अब्दुल्लाह, इसमें क्या हालत बन रही है, मफूल की, और कौन सी हालत बनी, नसबी हालत बनी, ठीक है। तो इसका मतलब है رأيتُ میں نے دیکھا عبد اللہ کو ٹھیک ہے پھر تیسری ذہبتُ الى عبد اللہ اس میں کون سی حالت بنی جری حالت بنی کیوں بنی جری حالت الہ پہلے آیا شاباش حرف جر پہلے آ گیا ویری گڈ اچھا اب آپ نے دیکھا نا کہ تینوں میں اعراب کے بدلنے کی وجہ سے کتنی بڑی چینج آ گئی ٹھیک ہے اسی طرح ہم کبھی مسلمونا کہتے ہیں کبھی مسلمینا کہتے ہیں تو مسلمونا جب ہم نے یوز کیا تو کس حالت میں یوز کیا رفعی حالت فاعل کی حالت مسلمینا یوز کیا تو نصبی حالت ہے یا کوئی جری حالت ہو گئی ٹھیک ہے تو اس طرح سے حالتیں اعراب سے ڈیفائن ہوتی ہیں اس لیے ہمیں اتنی ضرورت ہے کہ ہم یہ جانیں کہ کبھی کبھی کسی کا اعراب نہیں بھی چینج ہوتا ہم اسی میں نا انتظار میں بیٹھے رہے ہیں کہ اس کا اعراب چینج ہوگا کہیں ابراہیمی بنے گا ابراہیمی نہیں بنے گا کیونکہ وہ کیا ہے نہیں وہ کیا ہے غیر منصرف یعنی اس کے نیچے کبھی زیر نہیں آتی مبنی تو وہ ہیں جن کا فکسڈ ہے لیکن ہم ابراہیمو یا ابراہیمہ تو بنتا ہی ہے نا اس کا مطلب چینجنگ تو آئی لیکن اس کے نیچے زیر کبھی نہیں آ سکتی ابراہیم من کبھی نہیں بن سکتا تنوین کبھی نہیں آ سکتی ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ ایسے بھی اسماء ہوتی ہیں جن میں چینجنگ نہیں آتی ہیں ان میں زیر نہیں آتی جی ہاں جا عبداللہ عبداللہ کیم ٹھیک ہے اور آئی تو میں نے دیکھا آئی سو عبداللہ پھر وہاں پہ آیا کیونکہ عبداللہ از آبجیکٹ ناؤ عبداللہ کو دیکھا نا ٹھیک ہے اور جب تھرڈ میں ہے تو الہ لگ گیا نا حرف جر تو اس لیے عبداللہ ہو گیا ٹھیک ہے تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اعراب کے بدلنے سے میننگز میں بہت بڑی چینج آ جاتی ہے آج ہم بھی تھوڑا سا دیکھیں گے وہ یہ دیکھیں گے کہ جیسے کبھی کبھی ہم اسم بلحاظ تعریف لکھیں گے آج تعریف یا وصف اسم کو ہم اس طرح سے بھی ڈیفائن کرتے ہیں
ایک ہوتا ہے کسی کا نام کسی کا بھی نام یعنی اس کا ذاتی نام اب ہم کہیں کلثوم اب ہم کہیں عظما اب ہم کہیں ارم یہ ہے ذاتی نام ٹھیک ہے اب ہم کہیں میز کرسی دیوار یہ کسی کا نام ہے ٹھیک ہے اور ایک ہوتی ہے اس کی کوالٹی ہم کہیں کائنڈ ہم کہیں جینرس تو کیا تو میں ان کو ہی رہی ہوں لیکن یہ ان کا نام نہیں ہے ذاتی نام نہیں یہ ہے ان کی کوالٹی ٹھیک ہے تو اسی طرح اسم جو ہے نا جو کوالٹی ہوتی ہے کسی کی وہ بھی اسم ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سے ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ ایک تو ہے اسم ذات
یعنی کسی پرسن کا نام کسی چیز کا نام کسی جگہ کا نام جو نام کو ظاہر کرے وہ اس کو کہتے ہیں اسم ذات ٹھیک ہے اور دوسرا اسم صفت 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 کیا ہوتی ہے کوالٹی کسی کی اور اس میں کوالٹی ضروری نہیں کہ اچھی کوئی بات ہو کسی کی بری بھی بات ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو جب ہم اسم کو اس طرح سے تعریف کے لحاظ سے دیکھیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کسی کی بھی اچھائی یا برائی اس کی صفت ہوگی ہاں اردو میں تو صفت کہتے ہیں نا ہمیشہ اچھی چیز کے لیے مگر عربک میں صفت کیا ہوگا کسی کی بھی اچھائی یا برائی کو جو ظاہر کرے وہ اس کی صفت ہے تو اسم ایک ذات ہے اور ایک ہے اسم صفت صفت فار ایگزامپل اگر کسی کا نام ہے ساجدہ تو یہ کیا صفت ہے یا پھر اسم ذات ہے کتنے لوگ کہہ رہے ہیں اسم ذات ہے اور کتنے کہہ رہے ہیں اسم صفت ہے دیکھیں جب کسی کی ذات کا نام ہوگا نا آپ کا نام اگر ساجدہ ہے ضروری نہیں ہے آپ سجدہ کرنے والی بہت زیادہ ہو اب یہ کس طرح سے آیا ہے اس کے ذات کے لحاظ سے ٹھیک ہے اب کسی کا نام صائمہ روزہ رکھنے والی اب چاہے وہ روزہ رکھے نہ رکھے لیکن اس کا یہ اب ذاتی نام ہے ٹھیک ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ صفت الگ ہوتی ہے کبھی کبھی وہ صفت والا ہی نام لوگ ذاتی نام کے طور پہ رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس وقت وہ کیا کہنے لگا اسم ذات
अनलेस कि वो उसकी क्वालिटी के तौर पे आए कि मैं कहूँ कि ये जो है ना साइमा है, यानी अब ये इसकी सिफत के लिहाज से बयान की कुलसुम साइमा है मसलन कहा जाए, तो फिर अब क्या होगा, साइमा उसकी सिफत बन गई। ठीक है, ये बात समझ आई आप लोगों को। मोमिना किसी का नाम हो सकता है, वो ईमान वाली ही ना हो, लेकिन उसका नाम मोमिना है तो ये अब उसका इसम जात हो गया। ठीक, समझ आ गई ये बात। अच्छा, अब जिसकी सिफत बयान की जाए ना उसको कहते हैं मौसूम, उसको क्या कहते हैं
मौसूम।
तो उसको कहते हैं मौसूफ की जिसकी, अगर मसलन है कि मैं इनकी सिफत बयान कर रही तो अब ये क्या हो गई मौसूफ। ठीक है, जिस इसम की भी सिफत बयान की जाए उसको कहते हैं मौसूफ, और जो उसकी क्वालिटी है उसको क्या कहेंगे इसम सिफत। ठीक है, अब हम इसको किस तरह से डिटरमिन करेंगे कि ये वाला इसम सिफत है जब हम कुरान खोलेंगे। उसका आसान तरीका ये है कि आप देखेंगे कि इसम सिफत जो होता है ना वो अपने मौसूफ के साथ इराब में भी सेम होता है। अगर मौसूफ मुजक्कर है तो मुजक्कर ही सिफत होगी यूज, मुअन्नस है तो मुअन्नस सिफत होगी। इसी तरह अगर मौसूफ वाहिद है तो वाहिद सिफत यूज होगी, जमा है तो जमा सिफत यूज होगी। ठीक है, अनलेस जमा मुकसर गैर आखिर लोग, उसका मैं बाद में आपको बताऊंगा। इसी तरह अगर जो मौसूफ मारफा है तो सिफत भी मारफा यूज होगी, अगर मौसूफ नकेरा है कॉमन नाउन है तो सिफत भी कॉमन नाउन होगी। यानी आप देखेंगे दोनों साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, जब वो दोनों साथ साथ चलते हुए आप देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये जो है सिफत और मौसूफ आ रहे हैं। ठीक है, कि दोनों का एराब भी सेम है, वाहिद तस्मिया जमा भी सेम है, मुजक्कर मुअन्नस भी सेम है, मारफा नकेरा भी सेम है, सिफत और मौसूफ के सेम सेम चल रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अल कुरान अल हकीम, हकीमी अल कुरान अल हकीमी। तो देखिए दोनों में क्या है, अलिफ लाम उसमें भी अगर आ रहा है किसकी सिफत बयान हो रही है कुरान की, कि वो हिकमत वाला है। ठीक है, तो अलिफ लाम पहले में भी है तो दूसरे में भी अलिफ लाम आया। ठीक है, वो भी वाहिद है तो वो भी वाहिद आया। ठीक है, वो भी मुजक्कर हो तो वो भी मुजक्कर आएगा। ठीक है, यानी हर चीज में सिफत अपने मौसूफ पे डिपेंडेंट होगी। इसी तरह लौहुल महफूज, लौहे महफूज को हम कहते हैं लौहुल
महफूज,
लौहे महफूज को हम कहते हैं। अब इसके अंदर भी क्या क्या चीजें सेम है, दोनों क्या है, अगर हम देखें इसको वुसत के लिहाज से तो दोनों क्या है, नकिरा है मारफा है नकिरा है, तो दोनों नकिरा है, लौह भी नकिरा महफूज भी नकिरा। ठीक है, एराब के लिहाज से देखें तो सेम है, सेम है एराब। अच्छा, जब वाहिद तस्मिया जमा के लिहाज से देखें तो सेम है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चलता है कि जो सिफत होगी वो डिपेंडेंट होगी अपने मौसूफ के ऊपर, जैसा मौसूफ होगा वैसी सिफत आएगी। अच्छा, अन्नफ्सुल मुतमाइन्नतु, अन्नफ्सुल मुतमाइन्नतु, अन्नफ्सु, अब अन्नफ्सुल नफ्से मुतमाइन है ना, अन्नफ्सुल अन्नफ्सुल मुतमाइन्नत। आप देखिए इसके अंदर क्या क्या चीजें सेम आ रही है, अलिफ लाम सेम है, ठीक है, मारफा दोनों का एराब सेम है और दोनों मुअन्नस है। शाबाश, यही मैं देखना चाहती थी कि अन्नफ्स जो है ना वो भी मुअन्नस है। ठीक है, इसलिए मुतमाइन्ना मुतमाइन नहीं आया, ताए मरबूता एंड में आई है मुअन्नस। ठीक है, अच्छा नहीं, नफ्स मौसूफ है, नफ्स की सिफत बयान की जा रही है कि नफ्स कैसा है, मुतमईन, उसकी क्वालिटी है ना कि वो मुतमईन नफ्स है। ठीक है, इसी तरह अगर आप देखें उम्मतुन मुस्लिमतुन, उम्मतुन मुस्लिमतुन, तो उम्मत की क्या क्वालिटी आई कि वो मुस्लिमा है, वो भी मोनस है वो भी मोनस है जी, ठीक है। अच्छा हम अगर उर्दू में बोलते हैं ना तो हम हमेशा जैसे हम कहते हैं मुस्लिम उम्मत, हम उलट बोलते हैं, लेकिन अरबिक में पहले क्या आएगा मौसूल और फिर सिफत आएगी, ठीक है। हम उर्दू में बोलते हैं नेक लड़का, पहले सिफत बयान करते हैं फिर मौसूल को बयान करते हैं, लेकिन अरबिक में जैसे अल वलद सालेह, ठीक है, ऐसे आएगा, सही है जी। अरबिक में हमेशा ऐसे ही होगा कि मौसूफ पहले आएगा सिफत बाद में, उर्दू से ऑपोजिट नहीं, नहीं ऐसे नहीं, आगे आ सकता है अगर कोई किसी की सिफत हो तो आ सकता है, किसी की भी सिफत बैठ, मैं तो आपको छोटे छोटे फ्रेजेस वैसे दे रही हूं ना, जैसे अल मस्जिदुल हराम, अल मस्जिदुल हरामु, तो देखिए आप मस्जिद हराम तो दोनों की सेम आ रहा है, मैं कोई ऐसा देखना चाहती थी कि जिसमें चलिए अगर आएगा कोई तो फिर मैं बताती हूँ कि अगर जमा मुकसर है तो फिर कैसा होगा, अगर जमा मुकसर हो तो फिर आप उस फिर उसका जो सिफत आएगी उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है, अगर जमा मुकसर है गैर आते ले ना तो उसकी सिफत मुअन्नस वाहिद आएगी फिर वो जमा नहीं आती, लेकिन खैर अभी आप यही देखें इसको। अच्छा इसके लिए निकालें सूरा अल-गाशिया, सूरा अल-गाशिया 30th पारा, कोई क्वेश्चन है आप लोगों में से, और एक एक मौसूफ की बहुत सारी भी सिफतें हो सकती हैं, हो सकती है ना, जैसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह तौबा में फरमाया ना मुमिनों की सिफतें अत्ताइबून अल-आबिदून अल-हामिदून अस-साइदून अर-राकिउन, तो बहुत सारी सिफतें हैं मुमिनों की, तो एक मौसूफ की बहुत सारी सिफतें हो सकती है, मैं ये भी कह सकती हूँ ये रहम दिल भी हैं और ये बहुत नेक भी हैं और ये बहुत ईमानदार भी हैं, कितनी सारी एक ही बंदे की हो सकती है ना सिफात, इसी तरह अरेबिक में भी आप देखेंगे बहुत सारी सिफात हो सकती है। अच्छा अब शुरू से देखिए वुजूह यौम इज़िन खाशिया, देखें वुजूह की क्या सिफत बयान की गई है खाशियातुन, ठीक है, तो आप देखें आप नोट करते जाएंगे दोनों का एराब सेम आ रहा है और किस तरह से मुजक्कर मुअन्नस भी, और ये आमिलतुन नासिबा देखें ये भी सेम है, नारुन हामिया ये भी सेम है, आइनिन आनिया ये भी सेम है, ठीक है। अच्छा फिर आप देखें वुजूहुन नाइमा आयत नंबर 8 में, ठीक है, रौदिया और फिर जन्नतिन आलियतिन, ठीक है, आइनुन जारियतुन सुरुरुम मरफूआतुन अकवाबुम मौदूआतुन, ठीक, फिर आप देखें अकवाबुम मौदूआतुन नमारिक मसफूफतुन जरादियु मबतूततुन, ठीक है, कहाँ पे कहाँ पे आप कह रही नमारिक मसफूफतुन, दोनों की क्या है दोनों पे पेश है ना, नहीं तनवीन तो है लेकिन है तो वही वाली हालत ना, वही वाली हालत है ना, तो आप देखें तो इससे आपको थोड़ा सा ये बताना मकसूद था कि जब भी आप देखेंगे कि सिफत और मौसूफ हो तो इसी तरह से दोनों की एराबी हालत भी सेम होती है, इसी तरह दोनों अगर मुजक्कर है तो मुजक्कर होगा मोनस है तो मोनस होगा, ठीक है, और अगर उनके अंदर वाहिद तस्निया जमा की तादाद का है तो तादाद भी सेम होगी जो सिफत और मौसूफ की होगी जी जी। आयत नंबर नहीं नहीं वो अपनी नहीं ये लिसाई है तो उनकी कोशिश पे किसी किस कोई मौसूफ नहीं है यहाँ पे, मौसूफ वो पीछे ही है वजूह, वजूह की जो है ना वो सिफत बयान की जा रही है ना कि वो वजूह जो है वो नाइमा भी है रौदिया भी है, ठीक है, तो ये दो सिफतें हो गई वजूह की। हाँ जी अच्छा बस हाँ वजूह जो है वो क्या है, अच्छा अभी आप कह रही थी ना कि जमा का नहीं समझ आई, जमा मुकसर की। देखिए जमा मुकसर का मैं पहले इसे बता रही थी, उनको भी मैं समझा रही थी, मुकसर क्या ब्रोकन, जब आपका जो वाहिद है सिंगुलर है वो ब्रेक हो जाए, उसकी वो एग्जैक्ट फॉर्मेशन ना रहे, वाओ जीम हा ऐसे वज होता है ना वज, या जिसम ले लें, चलो और जिसम ले जीम सीन मीम, ठीक है। अब उसको जब जमा उसकी बनाए तो अजसाम बन गई, अजसाम बन गई तो अब जीम सीन मीम तो नहीं रहा ना, शुरू में अलिफ लग गया, बीच में भी जाके अलिफ लग गया सीन के बाद, इसका मतलब आपने उसको ब्रेक किया। अगर जिस मुना होता जिस मीना होता तो फिर ये सालिम था, क्योंकि जिसम एज इट इज रहा, बस उसके बाद आपने एडिशन कर दी। जब आप एंड में एडिशन करते हैं तो, और वैसे का वैसे जो सिंगुलर होता है वो वैसे का वैसे लेके आप प्लस उसके अंदर एक चीज ऐड कर देते हैं तो वो सालिम है। लेकिन जब आप उसको ब्रेक करते हैं, जो सिंगुलर है उसको ब्रेक कर दिया, तो तब वो मुकसर है। मुकसर ही मीन्स ब्रोकन हो गया। जी जी वो भी मुकसर है, क्योंकि कल्ब जो था काफ लाम बा वैसे तो नहीं रहा ना, बीच में आ गई वाओ, ब्रेक हुआ ना। अब कुलूबूना होता कुलूबीना होता तो फिर आप कहते कि हाँ ये सालिम है, क्योंकि सॉरी कुलूब ने कल्बूना होता या कल्बीना होता तो आप कहते काफ लाम बा, देखो स्ट्रेट वैसे का वैसे ही रहा है, और आगे आपने बाउनून ऐड किया तो अब ये सालिम। सालिम मींस क्या कि सलामत, ठीक है, वो सलामत रहा ना। जब तक वाहिद सलामत नहीं रहेगा आप उसको सालिम नहीं कह सकते। मसलन मुनाफिक हुना है, मुनाफिक हुना का वाहिद क्या है, मुनाफिक, ठीक है, मुनाफिकुन हो गया, ठीक है। तो मीम नून अलिफ फा काफ सब सेम रहे, आगे आपने एंड में वाओ नून लगा दिया तो अब ये सालिम है, क्योंकि वो सलामत रहा है। अगर हम उसको ब्रेक करते कुछ और मुनफाक बना लेते, कुछ और कोई भी वर्ड, और उसको ब्रेक करते, सिंगुलर एज इट इज ना रहता तो फिर ब्रोकन था। नहीं नहीं कुछ भी आ सकता है, मैंने आपको बताया था ना ब्रोकन जो प्लूरल्स हैं उनका कोई एक मैं आपको सेट वो नहीं बता सकती। जैसे जमा सालिम का तो मैंने आपको बता दी ना कि वाउनून ऐड होगा या नून एंड में ऐड करेंगे, जिनके भी एंड में वाउनून या नून ऐड करेंगे और वो सिंगुलर एज इट इज रहेगा तो फिर, जैसे मुतकब्बिर का मुतकब्बिरून, मुतकब्बिर तो वैसे का वैसे ही रहा ना और बस एंड में वाउनून लगाया, तो इसका मतलब वो सालिम रहा, वो एज इट इज रहा, जो सिंगुलर था वो एज इट इज आए, बस उसमें एंड में कुछ ऐड हो जाए तो वो जमा सालिम। अगर उसको बीच में से आपने ब्रेक कर दिया कहीं से भी टू मेक इट प्लूरल तो फिर इसका मतलब वो ब्रोकन प्लूरल है, जमा मुकसर है। नहीं नहीं रूट वर्ड्स को नो करने की जरूरत, एज लॉन्ग एज आपको वाहिद पता हो ना या आप उसकी निशानी याद रहे रखें, जमा सालिम की निशानी वाउनून या नून एंड, ठीक है, और दूसरा मुकसर ही होगा जब वो ब्रेक हो गया, क्योंकि वैसे तो बन ही नहीं सकता ना। ऑफ कोर्स किताब क्या वैसे रही, या तो रहती ना किताबूना किताबीना तो फिर होता के जमा सालिम, लेकिन जब कुतुब बन गया तो आपने किताब का अलिफ निकाला, कुछ ना कुछ तो आपने उसके ऊपर एक्शन किया ना और आपने बात उसके साथ जोड़ दिया, तब वो ब्रोकन ही हुआ, ब्रेक तो आपने उसको कर दिया ना, ठीक है। जब तक वो सालिम का सालिम वैसे एज इट इज ना रहे आपने उसको जमा सालिम नहीं किया, ठीक है। अच्छा हाँ अब इसकी तरफ हम आते हैं, अब ये आपको समझ आ गई जमा मुकसर की, जमा मुकसर और आपको उन्हीं समझ आई है, ब्रोकन की समझ आई है, अब जमा मुकसर की। हाँ जब आप इसको और मजीद रीड करेंगी ना तो आपकी वोकैबुलरी जब बढ़ेगी इंशाल्लाह तो फिर आपको वो आएगी, क्योंकि उसका कोई सेट रूल नहीं है, ठीक है। और हमें इसलिए ज्यादा फायदा कि हमें उर्दू आती है तो उर्दू में भी वही है और वही अरबिक में, सही है, तो इंशाल्लाह वो आहिस्ता आहिस्ता आपको आता जाएगा। इसी तरह वज की जमा वुजूह, वुजूह होनी यहाँ पे है, ठीक है, ये क्या है जमा मुकसर। तो इसके लिए फिर हम, मैंने आपको जैसे बताया कि मुअन्नस की वाहिद भी यूज कर सकते जमा मुकसर, जब जमा मुकसर आती है ना तो उसके लिए हम यानी गैर आकिल आएगी तो हम इसके लिए واحد مونس بھی یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ واحد مونس ہے نا, نائمتن. جی جی جی, ورنہ تو آپ کو جمع بنانی چاہیے تھی نا, وجوہ ہے نا بہت سارے چہرے, تو یہاں پہ نائمتن آ گیا بس. جمع مکسر غیر عاقل کے لیے واحد مونس کی یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, انسان کے لیے نہ ہو, جن کے لیے نہ ہو, فرشتے کے لیے نہ ہو, یہ تین نام جو ہے نا ان کے اوپر نہیں ہوتی, وہ غیر عاقل نہیں ہے, وہ عاقل ہے. جمع مکسر غیر عاقل کے لیے واحد مونس. جی ٹھیک ہے, یہ بات سب کو سمجھ آئی ہے؟ جی آئینن, آئینن جاریہ, بالکل جی جی جی. اچھا اگر میرے پاس کوئی اور ایگزامپل ہونا پھر میں آپ کو بتاتی ہوں. ہاں جی, سرور مر, جی سریر کی جمع, شاباش. ہاں سریر کی جمع سرور, سرور مرفوع, یہ بھی ہے نا. اچھا تو یہ والی بات آپ لوگوں کو سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ اتنی بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اس میں اگر نہیں بھی جائیں, آپ کو اتنی بات سمجھ آ گئی ہے؟ سب کو کوئی کوسچن تو نہیں ہے؟ جی اچھا, اگر جمع مکسر غیر عاقل ہوگی نا, جمع مکسر غیر عاقل, تو اس کی صفت مونس واحد, پھر آپ اس کو یعنی ہم نے, اچھا ایک بات آپ کو یاد نہیں, نکالیں ذرا مونس والا, یہاں سے آپ کو میں یاد دلاتی ہوں, مونس والا پیج نکالیں جس کو مونس کے سارے. ہاں جی بتائیے, اب اس میں دیکھیں جمع مکسر غیر عاقل لکھا تو ہوا ہے کہ مونس ہے, تو اس کے ساتھ مونس ہی آئے گی نا, صرف آپ نے یہ یاد رکھنا ہے واحد, وہ تو ہے ہی مونس, تو اس کے ساتھ واحد بس آئے گا. ٹھیک ہے, اچھا اگر جی یہ سارے ہی اس کے اندر آتے ہیں, اس میں بہت سارے, یہ ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں بہت سارے یعنی صفت اور موصوف آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس صورت میں اگر جمع مکسر غیر عاقل کی ہوگی تو صفت واحد مونس آئے گی. جی بالکل صحیح. اچھا اب ہم تھوڑا سا اس کے اندر اور آگے دیکھ لیں, اتنی بات آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی تھی الحمدللہ. تو اب آپ لوگ اگر آپ کو کہا جائے کہ اس میں سے آپ نکالیں قرآن پاک میں سے کہیں, تو آپ نکال کے لا سکتے ہیں اگلی دفعہ صفت اور موسم. الصراط المستقیم, دیکھیں کیا ہے الصراط المستقیم ہے نا, اب آپ کو سمجھ آئے کہ دیکھو سورہ فاتحہ میں ہی یہ کیا تھی, موسم کا صراط, اور کون سا صراط ہے, کیسا ہے وہ صراط, اور مستقیم ہے سیدھا ہے, یعنی اس کی کوئی اچھائی یا برائی کسی چیز کی بھی کوئی بھی بیان کی جائے تو اس کو کہتے ہیں اس کی صفت. نہیں وہ نہیں, تو نے نام کیا نا, وہ تو ایک فیل ہو گیا نا. اچھا اچھا, کہاں پہ ہے آگے؟ اچھا ہاں اس میں نہیں ہے, لیکن ہاں بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح انہوں نے بتایا, بالکل صحف, صحیفے کی جمع صحف اور متحرہ, بالکل صحیح. اچھا اگلے پہ دیکھیں, النفس المطمئنہ جو میں نے اگزامپل دی وہ تو اگلی صورت میں آئی. اس طرح سے آپ ان شاء اللہ اس پارے میں سے فائیو اگزامپلس نکال کے لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے, فائیو اگزامپلس آپ نکال کے لے کر آئیں جو کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صفت اور موصوف ہے اس پارے میں سے, یا کہیں سے بھی چلیں نکال کے لے آئیں, کہیں سے بھی لے آئیں. اب دیکھیں ابھی مجھے کافی نظر آ رہی ہیں یہاں پہ, ابھی میں آپ کو اور نہیں بتاؤں گا. नहीं कोई भी सूरत में से निकाल के लिया आपने इसके ना निशानी देखनी है ना जो कहाँ पे सूरह आलम जी बिल्कुल ठीक है हाँ लेकिन ये पीछे से ना उसकी वजह से उसका एराब जो है ना बदल गया पी का अच्छा अब इसके अंदर हम देखते हैं जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही है बिल्कुल बड़ा अजाब क्या वो क्या है असफल साफिलीन क्या है नीचों से नीचे इसमें क्या सिफत है और क्या मौसूफ है ना नहीं ना तो इसका मतलब आप बेशक आप मीनिंग वाला कुरान रख लेना और उसे साथ साथ मतलब देख के और इंशाल्लाह आप उसको कर सकते हैं अच्छा अब हम आगे देखते हैं इसमें इसम फाइल थोड़ा सा उसको देख लेते हैं इसम फाइल को इसम फाइल भी इसी का सिफत ही बयान करता है या काम करने वाले को बयान करता है इसलिए हम इसको भी समझते यही है कि ये भी इसम सिफत ही की एक फॉर्म है यानी इसम फाइल की फॉर्म में भी सिफत जाहिर हो सकती है एक तो हमने फाइल पढ़ा था ठीक है फाइल पढ़ा था मैंने आपको बताया जैद ने हामिद को मारा तो अब जैद क्या है फाइल है हामिद क्या है मफूल है ठीक है एक तो हमने ये बात पढ़ी एक है इसम मफूल या इसम फाइल तो इसम फाइल इसम मफूल डिफरेंट है फाइल और मफूल से ठीक है इसम फाइल में क्या होता है इसम फाइल में फेल का नाम भी पता चलता है कि क्या फेल किया जा रहा मिसाल के तौर पे जालिम जालिम क्या है कैसे आप उसको डिफाइन करेंगे जुल्म करने वाला ठीक है ना जुल्म करने वाला तो क्या हुआ फाइल हो गया ना कुछ कर रहा है ना वो ठीक है कातिल क्या कत्ल करने वाला तो क्या हुआ करने वाला तो है लेकिन साथ साथ हमें पता चल गया कि क्या काम कर रहा है तो जो इस तरह का होगा उसको हम कहेंगे इसम फाइल अगर हमने कहा जैद ने हामिद को मारा तो उसको हम इसम फाइल नहीं कहेंगे क्योंकि उसमें फेल नहीं पता चलता जैद मैं कह दूं तो आपको पता चलेगा क्या किया उसने लेकिन मैं कहूं जालिम तो फौरन पता चल गया इसलिए जुल्म करने वाला है हाँ ये भी कह सकते हैं हाँ, ये उसको अगर डिफाइन करेंगे तो आपको फेल का पता चलेगा ना करने वाला ठीक है जैसे राहिम रहम करने वाला ठीक है यानी कुछ करने वाला है ना उससे पता चल गया वो फाइल भी होगा और साथ साथ फेल का भी पता चल रहा होगा तो जब हम कहेंगे इसम फाइल इसम जात की भी एक फॉर्म है सॉरी इसम सिफत की ही एक फॉर्म है इसम फाइल में क्या होगा फेल का भी पता चलेगा और प्लस करने वाला है ये भी पता चलेगा ये दोनों चीजें पता चलेगी फेल का भी पता चलेगा जैसे जालिम तो फेल पता चला ना क्या फेल है ठीक है और क्या करने वाला करने वाले का भी पता चलेगा कि ये जब मैंने कह दिया जालिम तो एक फॉर्म पे है ना वो किस फॉर्म पे है फाइल के बदन पे किस बदन पे फाइल के बदन पे जब फाइल के वजन में आया तो हमें पता चल गया कि ये कुछ करने वाला था जालिम के ना कैसे पता चलेगा आपको किसी को बता दें कि भाई जालिम तो कैसे पता चलेगा ये जुल्म करने वाला क्योंकि हमें एक हमारे दिमाग में एक सेट पैटर्न है कि इस पैटर्न पे जो अल्फाज आएंगे वो करने वाला होता है मतलब जालिम जालिम कातिल आलिम आलिम नहीं इसलिए कि इस वो एक और वजन पे ये अभी हम फाइल की बात कर रहे हैं अभी इसम फाइल में और भी औजान है मगर फिलहाल के लिए हम सिर्फ फाइल को देते हैं इस वजन पे जो आते वजन का मतलब क्या होता है आज आपको ये भी बता दूं पा ऐन ला इस ये एक पैटर्न हमने रख लिया ग्रामर में समझ लें आपने वो तो बोलते हुए देखा है ना कि वो एक तरफ रखते हैं कुछ वेट्स रखते हैं और फिर जो चीज इस वेट के मुताबिक मतलब एक के जी का बट्टा रखा है तो जो चीज यहाँ पे रखेंगे अगर वो बराबर हो गई तो इसका मतलब ये भी एक के जी उसी तरह समझ लें कि एक पैटर्न है सांचे एक रखेंगे फा ऐन ला
بجائے اس کہ میں ظالم رکھوں کہیں آپ کچھ اور رکھ لیں کہیں آپ کچھ اور رکھ لیں, ہم نے فا عین لام رکھا. اب فا کی جگہ پہ روٹ ورڈ کا پہلا ورڈ لگا ہے, مثلا قتل کا ہم نے دیکھنا ہے تو پاپ ڈالا فا کی جگہ پہ, الف کو ویسے ہی رہنے دیا, کوئی اور ورڈ نہیں, فا عین لام پہ ہی ہم نے دیکھنا. عین کی جگہ پہ ہم نے دوسرا روٹ ورڈ رکھا, کیا ہے دوسرا روٹ ورڈ؟ تا. تا. اور لام کی جگہ پہ ہم نے تیسرا روٹ ورڈ رکھا, کیا ہے تیسرا روٹ ورڈ؟ لام. تو کیا بن گیا؟ قاتل. جب ہم نے اس پیٹرن پہ اس کو رکھا تو اب یہ کیا بن گیا؟ اسم فاعل. اسی طرح کذب جھوٹ ہوتا ہے, اب ہم نے جھوٹ بولنے والا جو جھوٹا ہے, جیسے اب اس میں والا نہیں آیا نا, جھوٹا ہو گیا, تو اب ہمیشہ یہ نہیں سوچنا بلکہ یہ کہنا ہے کہ جو کوئی کام کرنے والا ہے کا بسا پیار ہے, ٹھیک ہے. اب کیا تھے اس کو ہم نے ڈالنا, فا کی جگہ پہ کاف, ٹھیک ہے. اچھا اب الف کی جگہ پہ الف ہی آئے گا ویسے کا ویسے, عین کی جگہ پہ دوسرا روٹ ورڈ کا لیٹر ڈالے, لام کی جگہ پہ تیسرا روٹ ورڈ کا لیٹر ڈالے, با. اور اس کی اعراب وہی دینی, کیا زیب, جو فا ال کی تھی, کیا زیب, ٹھیک ہے, اور ال, تب وہ اسم فاعل بن گیا. یہ بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ دوبارہ سمجھاؤں, کس کس کو نہیں سمجھ آئی؟ آگے سب کو. اچھا آپ نے ہم نے گرامر میں ایک پیٹرن دینے کے لیے فا عین لام کو آلویز ہم یوز کرتے, اسی کے ویٹ پہ دیکھیں گے, اگر یہ اس ویٹ پہ آ رہا ہے تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ بھی وہی چیز.
بیسیکلی یہ دیکھنا تو تین ورڈ ہونے چاہیے,
تین لیٹرز, تین لیٹرز فا عین لام, ہر ایک آگے فائل بنائیں گے ہم, جیسے ابھی انہوں نے کہا بکیل, تو وہ بھی کیا اس پہ اترتا ہے یا نہیں اترتا, ہم دیکھیں گے کیا فعیل اس کے اندر ہے اسم فاعل کے اندر کہ نہیں, اس کے بہت سارے وزن ہوں گے, فا عین لام سے سارے شروع ہوتے رہیں گے, ساروں کے ساتھ آپ اپنے جو بھی آپ نے ایڈ کرنا ہوگا لفظ اس کے لیے اس کے لیٹر آپ اس میں ڈالتے ہیں. آپ نے بچوں کو دیکھا ہے وہ کتنا سا وہ ہوتا ہے ٹرائنگل بنا ہوتا ہے, اس میں ٹرائنگل ہی شیپ جاتی ہے, سرکل ہے تو سرکل ہی جاتی ہے, اسکوائر ہے تو اسکوائر جاتا ہے, اسی طرح یہ فا عین لام ہے.
نہیں جیسے اس میں تو فا عین لام ہے جی, لیکن جیسے ابھی آپ نے کرنی بڑا بنایا وہ تو ٹوٹلی ڈفرنٹ اس کے الفاظ سے, اس سے تو وہ میں کبھی تین لفظ ہی دیکھنے ہیں, جیسے کہ آپ نے تین کی ہیں پچھلے دن,
لیکن ان تینوں کو اس کے وزن پہ رکھنا ہے, اس کے وزن, ہر ایک ورڈ کے کوئی نہ کوئی روٹ تو ہوتے ہیں نا, دیکھیں ابھی رکھ کے دیکھتے ہیں, کاف دال بال, ٹھیک ہے, کاف کو یہاں رکھے, کاف آپ نے رکھا,
اچھا یہ آپ اس طرح کریں,
الف الف کو رکھے, الف اس کو ساتھ جوڑا, کاف کے ساتھ الف بھی جوڑ دیا, عین کی جگہ پہ زال, اور عین کے نیچے کیا فاعل, عین کے نیچے زیر ہے آپ نے زال کے نیچے زیر لگا دی, لام کے اوپر سکون ہے آپ نے با کے اوپر سکون لگا دیا, فا کے اوپر زبر ہے آپ نے کاف کے اوپر زبر لگا دی, کیا دیکھو بن گیا فاعل. صدق سے دیکھیں, صدق فا کی جگہ